नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। कहा, संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। हाथरस भगदड़ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 121 हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति का जायजा लिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अस्ताना में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। युद्ध क्षेत्र में भारतीय नागरिकों पर चिंता व्यक्त की और उनकी सुरक्षित वापसी की मांग की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सरकार जल्द ही भारत एआई मिशन शुरू करेगी। सेंसेक्स ने पहली बार ऐतिहासिक 80,000 के स्तर को पार किया। निफ्टी भी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। और विंबलडन टेनिस में रोहन बोपन्ना और सुमित नांगल आज शाम अपने अपने जोड़ीदारों के साथ पुरुष डबल्स के शुरुआती मैच खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज राज्यसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान केवल अनुच्छेदों का संकलन नहीं है, बल्कि इसकी भावना और शब्द सरकार के लिए मूल्यवान है। श्री मोदी ने कहा कि संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब देते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संविधान 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने संविधान दिवस मनाने का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोगों का त्यौहार बन गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोध करने की है। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार के दृष्टिकोण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। उन्होंने कहा कि देश गरीबी के खिलाफ विजयी होगा। श्री मोदी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की गति, गहराई और विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है।
आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे तब सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने इस सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का समर्थन किया है और सरकार को उसके प्रदर्शन के आधार पर चुना है। उन्होंने कहा कि 6 दशक बाद ऐसा हुआ कि लोगों ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार चुना है। प्रधानमंत्री जब बयान दे रहे थे तो कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्य हंगामा करके सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे सीटों पर वापस जाने को कहा। बाद में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के वॉकआउट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष में अपने ही सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने विपक्ष के वॉकआउट को उच्च सदन का अपमान बताया। सभापति ने भी विपक्ष के वॉकआउट पर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा की घटनाओं में कमी आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गृहमंत्री और गृह राज्य मंत्री कई दिनों तक मणिपुर में रहे और लोगों से जुड़ने के लिए कई बार राज्य की यात्रा की। इससे पहले आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा फिर शुरू हुई। यूपीपीएल के रवंगवरा नारजरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट नीति के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र फला फूला है। कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों को सदन ने श्रद्धांजलि दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस दुखद घटना में जानमाल की हानि और घायल होना दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को हाथरस की घटना पर बयान देना चाहिए।
ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं और इसके लिए कोई कानून नहीं है। ऐसा आज जो बड़ा हादसा हुआ, 135 लोग मर गए हैं, तो इसीलिए इसको एक आप कानून बनाएं। अंधश्रद्धा के लिए कर्नाटक महाराष्ट्र में कानून बने हैं, उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए।
राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी घोषणा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
अगर आपको भी संगीत से है लगाव और रखते हैं संगीत में प्रतिभा, तो आप भी अपना करियर भारतीय नौसेना के साथ बनाएं। अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवार अग्निवीर MR म्यूजिशियन नवंबर 2024 बैच के लिए 1 जुलाई 2024 से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 11 जुलाई 2024। विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। इंडियन नेवी, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। गंभीर रूप से घायल 31 लोगों का अलीगढ़, आगरा, एटा और हाथरस के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 72 शवों की पहचान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए आगरा जोन के अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। हाथरस जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 0572227041 और दूसरा नंबर है 0572227042। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की क्षमता का उपयोग करने के भारत के दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना है। नई दिल्ली में आज ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही भारत AI मिशन लॉन्च करेगी जिसकी लागत 10,000 करोड़ रूपये है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कजाकिस्तान के अस्ताना में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से वर्तमान में युद्ध क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने उनकी सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए कहा। दोनों मंत्रियों ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर भारत रूस द्विपक्षीय साझेदारी और समसामयिक मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सेंसेक्स आज सवेरे खुलते ही पहली बार 80,000 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। दोपहर के समय ये 440 अंक से अधिक बढ़कर 79,884 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में निफ्टी ने अब तक का उच्चतम स्तर बनाया और दोपहर के कारोबार में ये 133 अंक की बढ़त के साथ 24,257 पर था। विंबलडन ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन आज शाम लंदन में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष डबल्स के पहले दौर में बोपन्ना और एब्डन का मुकाबला फ्रांस के जियोवानी मपेत्शी पेरिकार्ड और एड्रियन मनारिनो की जोड़ी से होगा। एक अन्य मैच में भारत के सुमित नागल भी अपने जोड़ीदार सर्बिया के दुसान लाजोविक के साथ पुरुष डबल्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम वैज्ञानिक डॉ सोमा सेन ने देश में मॉनसून के बारे में विस्तार से बताया।
अगले 5 दिन का वार्निंग देखते हैं तो जो खास रेनफॉल की जोन रहेगी वो रहेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और उत्तराखंड में, मेघालय खासकर, साथ में असम, अरुणाचल प्रदेश में 4, 5, 6 तारीख वेरी हेवी से लेकर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है और उत्तराखंड में 3, 4, 5, 6 तारीख को एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी बंगाल, ईस्ट इंडिया, झारखंड, बिहार और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह में अगले 2 से 3 दिन तक अति भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर तक का बारिश होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। कोंकण से लेकर केरला तक पूरा रीजन में भारी वर्षा चलेगी अगले 4 से 5 दिन। गुजरात में बारिश आज के बाद से थोड़ा कम होने लगेगी। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो भारी वर्षा 2 दिन तक रहने की संभावना है मध्य प्रदेश में, मगर उसके बाद से बारिश कम होती जाएगी।
उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में कल सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। कुमाऊं क्षेत्र में भी अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली जिले में पागल नाला के पास और यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग डाबरकोट में भूस्खलन के चलते बंद हुए, जिन्हें अब यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। उधर पिथौरागढ़ जिले में तवाघाट में भूस्खलन के कारण आदि कैलाश की ओर जाने वाली सड़क आवाजाही के लिए बाधित हो गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में अभी भी 50 से ज्यादा मोटर मार्ग आवाजाही के लिए बंद है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
उधर बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में दरभंगा, नवादा, भागलपुर और पूर्वी चंपारण जिले में बिजली गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अगले 24 घंटे के लिए आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता।
जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते गंगा, गंडक और बागमती नदियों का जलस्तर पटना, मोतिहारी, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में तेजी से बढ़ा है। बागमती नदी बेलवा, डुब्बा घाट और मुजफ्फरपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। कमला बलान, महानंदा और परमार नदियों में उफान के कारण मधुबनी, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में निचले और तटबंध वाले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 से 6 दिन तक बादल छाए रहने, मध्यम वर्षा और आंधी की संभावना है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए पात्र शिक्षकों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जिलों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से कुल 50 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। पात्र शिक्षक मंत्रालय के पोर्टल www.nationalawards2teachers.education.gov.in पर नामांकन भेज सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। कहा, संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। हाथरस भगदड़ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 121 हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति का जायजा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अस्ताना में रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से मुलाकात की, युद्ध क्षेत्र में भारतीय नागरिकों पर चिंता व्यक्त की और उनकी सुरक्षित वापसी की मांग की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सरकार जल्द ही भारत एआई मिशन शुरू करेगी और सेंसेक्स ने पहली बार ऐतिहासिक 80,000 के स्तर को पार किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।